लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जन कल्याण तथा मानव केंद्रित समाज के निर्माण में योगदान प्रदान करे। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ भजन ऐसे भी हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं एवं अड़चनों को जीवन से दूर रखें। विद्रोही एदोम तेरी स्तुति करेगा, हमात के बचे हुए लोग तेरे पर्व मनाएंगे। मन्नते मानो, उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के लिए पूरा करो। निकटवर्ती राष्ट्र तेजस्वी प्रभु को भेंट चढ़ाने आए, क्योंकि वह शासकों का घमंड तोड़ता और पृथ्वी के राजाओं को आतंकित करता है। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 76वें भजन के अंतिम पद, जिनकी व्याख्या हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत की थी। इस भजन में भजनकार ने इस तथ्य को रेखांकित करना चाहा है कि ईश्वर का न्याय तब तब प्रकट हुआ जब जब ईश प्रजा ने उन्हें पुकारा। बाइबल प्रकाशना के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए भजनकार ईश्वर के कार्यों का स्मरण दिलाता है। वह ईश्वर के उद्धारकारी कार्यों का बखान करता तथा उन बातों की याद दिलाता है जब ईश्वर के सामर्थ्य से बुराई को परास्त करने के लिए जल प्रलय हुआ और पृथ्वी भयभीत हो उठी थी। इसीलिए भजन के 10वें पद में कहता है, ईश्वर जब तू न्याय करने और दीन दुखियों का उद्धार करने उठा, जब तूने स्वर्ग में अपना निर्णय सुनाया तो पृथ्वी भयभीत होकर शांत हो गई। वस्तुतः स्तोत्र ग्रंथ के 76वें भजन के अंतिम पदों में हमें याद दिलाया जाता है कि हमारा जीवन हमारी अपनी बपौती अथवा हमारी अपनी संपत्ति नहीं है। जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान है जिसे हम उन्हीं के आदेश अनुकूल व्यतीत करें, उसका किसी प्रकार से दुरुपयोग न करें, क्योंकि मानव जीवन ही वह स्थल है जहां ईश्वर के प्रेममय कार्य संपादित हुआ करते हैं। यही वह स्थल है जहां उनके उद्धारकारी कार्यों की प्रकाशना होती है। फिर अंतिम पद में भजनकार निर्देश देकर कहता है, निकटवर्ती राष्ट्र तेजस्वी प्रभु को भेंट चढ़ाने आए, क्योंकि वह शासकों का घमंड तोड़ता और पृथ्वी के राजाओं को आतंकित करता है। इस संदर्भ में हमने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि प्रायः राजा, शासक तानाशाह और राष्ट्राध्यक्ष यही मान बैठते हैं कि उन्हीं पर सब कुछ निर्भर करता है, वे ही अपने राष्ट्रों और देशों के कर्ता धर्ता हैं। किंतु 76वें भजन का रचयिता स्मरण दिलाता है कि यदि शासक और राजा केवल लौह दंड से लोगों का दमन करते हैं तो कभी भी ईश्वर के कोप और उनके न्याय से बच नहीं सकते। ईश्वर दीन दुखियों की सुधि लेते हैं, कहता है, ईश्वर शासकों का घमंड तोड़ता और पृथ्वी के राजाओं को आतंकित करता है। और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 77वें भजन पर मनन चिंतन करें। श्रोताओ, 76वां भजन प्रतापी ईश्वर की वंदना थी तो 77वां भजन इज़राइल के इतिहास पर विचार करता है। यह भजन हमें प्रार्थना करना सिखाता है। इस भजन के प्रथम 6 पद इस प्रकार हैं। मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूँ, मैं ईश्वर को पुकारता हूँ, वह मेरी सुनेगा। अपने संकट के दिन में मैं प्रभु को खोजता हूँ, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूँ। मेरी आत्मा सांत्वना अस्वीकार करती है, मैं ईश्वर को याद करते हुए विलाप करता हूँ। मनन करते करते मेरी आत्मा शिथिल हो जाती है, तू मेरी आँख लगने नहीं देता। मैं व्याकुल हूँ और नहीं जानता कि क्या कहूँ। मैं अतीत के दिनों पर, बहुत पहले बीते वर्षों पर विचार करता हूँ। श्रोताओ, 77वें भजन के इन शब्दों में हम संकट में पड़े मानव मन की व्यथा को पाते हैं। मनुष्य तभी ईश्वर को ऊंचे स्वर से पुकारने लगता है जब उसका संकट गहराने लगता है, जब उस पर कोई कठिनाई आ पड़ती है और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। ऐसा ही है 77वें भजन का प्रार्थी। इस विश्वास के बल पर कि प्रभु ईश्वर उसकी सुनेंगे, वह अपने संकट के दिन में प्रभु को खोजता है और कहता है कि दिन रात मैं बिना थके ईश्वर के आगे हाथ पसारता हूँ। वह इतना व्याकुल है कि नहीं जानता कि उसे क्या कहना चाहिए। वस्तुतः 77वें भजन का प्रार्थी लोगों की ओर से अथवा समुदाय की ओर से प्रार्थना नहीं कर रहा था, वह स्वतः की व्यथा को ईश्वर के समक्ष रख रहा था। दूसरे शब्दों में 77वां भजन एक अकेले और साधारण व्यक्ति की प्रार्थना है। बाइबल पंडितों का मानना है कि स्तोत्र ग्रंथ के 77वें भजन के प्रार्थी ने उस समय प्रभु ईश्वर को पुकारा होगा जब उसे अन्य इसराइलियों के संग संग वर्ष 587 ईसा पूर्व बाबुल निष्कासित कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप उसे खो जाने, अपने घर परिवार और जीवन यापन के साधनों को खो देने और स्वयं ईश्वर को खो देने का कटु अनुभव प्राप्त हुआ था। वह केवल सांत्वना से संतुष्ट नहीं होता है और कहता है, मेरी आत्मा सांत्वना स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि 6 पद में मैं अतीत के दिनों पर, बहुत पहले बीते वर्षों पर विचार करता हूँ, उन बीते वर्षों पर जिनके दौरान प्रभु ईश्वर ने इज़राइल का उद्धार किया था और उसे दमनकारियों के हाथों से छुड़ाया था। इस भजन के 7वें और 8वें पदों में प्रार्थी कहता है, रात को मुझे अपना भजन याद आता है, मेरा हृदय इस पर विचार करता है और मेरी आत्मा यह पूछती है, क्या प्रभु सदा के लिए त्यागता है? प्रार्थी जेरूसलम में व्यतीत अपने अच्छे दिनों की याद करता है और निष्कासित जीवन पर विलाप कर मानो अपनी स्थिति के लिए ईश्वर को ही दोषी ठहराने लगता है। उसे लगता है कि वह अपने शहर और अपने देश से ही नहीं अपितु ईश्वर से भी निष्कासित किया जा रहा था। प्रश्न करता है, क्या प्रभु सदा के लिए त्यागता है? उसे विश्वास नहीं होता कि प्रभु ईश्वर भक्त का कभी परित्याग भी कर सकते हैं। इस बात को स्वीकार करने के लिए वह तैयार नहीं है, क्योंकि जैसा कि 73वें भजन में हमने पढ़ा, प्रभु ईश्वर नबी मूसा के द्वारा अपनी प्रजा से स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
प्रभु का